الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم اور صحیح سنت احادیث کی روشنی میں اس نقطے کو ملاحظہ کیا کہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت یا شہادت ہوئی، اس وقت ایسے عناصر اس قوت کے ساتھ اور اس قدرت کے ساتھ موجود تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا جا سکے. ان عناصر کو منافقین سے تعبیر کیا گیا ہے. منافقت وہ مرض ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان پھلتا پھولتا ہے، اور اس سے سخت ترین ضرر اور نقصان کسی اور شے سے دین اسلام کو نہیں پہنچا. حتیٰ کہ جب غدیر خم میں اعلان ولایت ہوا تو واضح اور صراحت کے ساتھ آ گیا کہ یہود اور نصارہ سے اب کوئی خوف نہیں ہے. اگر اصل خوف ہے تو یہ منافقین ہیں، یعنی کیونکہ یہود و نصارہ سے خوف کے بارے میں واضح آ گیا، تو بقیہ ہمارے پاس یہی خطرناک ترین مرض رہ جاتا ہے. لہذا یہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں اور چند دلیلیں آپ کی خدمت میں پڑھی. سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 101، جو آخری عہد رسالت کے آخری ادوار کی یا آخری ایام کی سورہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. پھر انہیں عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیا جائے گا. یعنی اعراب، مدینہ منورہ کے ارگرد جو دہی آبادی ہے، ادھر بھی منافقین موجود ہیں، اور جو اہل مدینہ ہیں، خود مدینہ منورہ، کیونکہ اس کی تعداد، عدد، حدود عربہ وہ تاریخ میں ثبت ہے، اس میں بھی منافقین موجود ہیں. اور مفسرین اہل سنت نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں متعدد عدد لکھے ہیں، کیونکہ عدد گمان کی بنیاد پر ہی ہوں گے، یا اگر ایک دو روایتیں آ گئیں تو اس کی بنیاد پہ قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا. بعض کہتے ہیں کہ 33 تھے، 60 تھے، زیادہ کم، مختلف عدد آئیں، لیکن منافقین کا وجود تھا. یا سورہ توبہ میں ہی اشد کفر و نفاق، کہ اعراب انتہائی شدید کفر و نفاق رکھتے ہیں. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس معاشرے میں مومنین نہیں ہیں، اس معاشرے میں مومنین بھی موجود ہیں. وہ جنہوں نے آخری مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ نافرمانی کی اور نہ ان کی تعلیمات سے روگردانی کی، وہ ہستیاں موجود تھیں. امت اسلامیہ میں جتنی شخصیات گزری ہیں، افضل ترین شخصیات اسی عہد رسالت میں موجود ہیں. شیعہ سنی دونوں روایات اس کے اوپر شاہد ہیں کہ صحابہ کرام میں بعض ایسی شخصیات کہ ان سے اوپر امت کا کوئی فرد نہیں ہو سکتا. آئمہ علیہ السلام، چونکہ ہم آئمہ علیہ السلام کو حجج الہیہ میں شمار کرتے ہیں، جب بھی یہ بات کی جائے تو دیگر آئمہ علیہ السلام کے بعد دیگر افراد شمار ہوتے ہیں، مثلا جناب سلمان فارسی، جنہیں سلمان محمدی کہا گیا، ان سے افضل ترین شخص کوئی موجود نہیں ہے. اسی طرح مقداد ہیں، عمار ہیں، جناب ابو ذر ہیں، ایک بڑی فہرست ہے صحابہ کرام کی. لہذا مومنین بھی اس ایک ریاست اسلامی میں موجود ہیں، لیکن منافقین بھی موجود ہیں. اور یہ منافقین، ان کے منافقین کی صفت قرآن نے بیان کی، اشد کفر و نفاق، یہ اعراب کے لیے آیا. مرد علی النفاق اہل مدینہ کے لیے آیا. انتہائی ہٹ درم اور ضدی قسم کے یہ منافق ہیں کہ جن کے دل میں ایمان نہیں جا سکتا. یہ ہم نے گزشتہ درس میں چند دلیلوں سے دیکھا، اور ان میں سے ہم نے ان اسباب کو بھی دیکھا جس سبب سے وہ منافق بنے، جیسا کہ جامع ترمذی میں، اہل سنت کی سنن ترمذی یا جامع ترمذی کہا جائے، और अल्बानी ने भी इस रवायत को सही करार दिया है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के हक़ में फ़रमाया कि ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन, हसरिया जुमला है, आपसे फ़कत और फ़कत मोमिन मोहब्बत करेगा। वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन, और आपसे फ़कत और फ़कत मुनाफिक बग़्ज़ और दुश्मनी रखेगा। बस दुश्मनी अली वो मुनाफिकत का सबब है। या ये मेयार उम्मत को तालीम दिया, अना हरबुन लिमन हारबकुम या लिमन हारबतुम। एवं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग में होना उस शख्स से कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो दुश्मनी करे, पंजतन का नाम लिया। और अल्बानी ने जामे उल सगीर में अपनी किताब में उसने इसको सही सनद करार दिया है। इस किताब में जो सही उल जामे सगीर के नाम से छपती है उसमें हसन दर्जे की इस रवायत को करार दिया, यानी मकबूल काबिल कबूल ये रिवायत है। या इसी तरीके से कि इस घर की तज़ीम की, उम्मत को तज़ीम सिखाई, यहाँ तक कि सही सनद रवायत अहले सुन्नत में है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से कि जब जनाब सैयदा सलाम अलैहा तशरीफ़ लाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो जाते। फ़ाजलसहा मजलिसहू, जनाब सैयदा सलाम अलैहा को अपनी जगह पर बिठाते और उन्हें बोसा देते, मरहबा कहते, इस्तकबाल उनका करते। ये गैर मामूली तज़ीम, गैर मामूली एहतराम, ये उम्मत को एक दर्स था। अब हम आज के इस दर्स में, ये तो गुज़िश्ता हमारे पास दर्स का ख़ुलासा हो गया कि इस ख़ुलासे में हमने दो नुकात बुनियादी देखे। कवी तौर पे अनासिर मौजूद थे मुनाफिकत के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर भी हमलावर हो सकते थे और हुए। इसी 9-10 हिजरी में वादी उकबा का ये वाक़या पेश आया, तबूक से वापसी की सूरत में कत्ल करने की कोशिश की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो अफराद पहचाने भी गए। यकीनन वो जो अफराद आए उनके अलावा भी पीछे साजिशी अनासिर होंगे। और इसी तरीके से हमारे पास कुरान की आयात भी आ गई, यानी इतने कवी अनासिर थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जान को ख़तरा था। और उसके बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान भी किया, उम्मत को दर्स भी तज़ीम और मोहब्बत और एहतराम का दिया, और बयान भी किया कि क्या उम्मत करेगी मुस्तकबिल में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये पहलू के बाद दूसरा पहलू इसी जगह पर आता है, यानी इन कवी अनासिर के साथ साथ कि इनकी अजमत को और इनके एहतराम को इतना बुलंद किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उम्मत में जुर्रत नहीं थी कि इनके सामने कोई आके खड़ा हो सके, लेकिन तदरीजन इन उमूर को अंजाम दिया गया। आज के दर्स में हम ये देखेंगे कि जनाब सैयदा सलामुल अलैहा का मुतालबा क्या था। आया ये कोई एक बाग था जिसके लिए झगड़ा हुआ, या जनाब सैयदा सलामुल अलैहा वो ज़मीन के किसी टुकड़े में जज्बाती हो गई और वहाँ पे बाज़ अफराद ने उन्हें वो टुकड़ा ज़मीन का नहीं दिया और इस सूरत में बस नाराज़ चली गई। क्या सिर्फ इतना सही मसला है या नहीं, बल्कि इसके बरखिलाफ़ जनाब सैयदा सलामुल अलैहा के मुतालबे के पीछे कोई हदफ है, कोई मकसद है। इस कुर्बानी, इस शहादत के पीछे कोई हदफ और मकसद पिनहा है, और हकीकत यही है जो रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी साबित होती है और अहले सुन्नत कुतुब में जो सकीफ़ा के हालात या जनाब सैयदा सलामुल अलैहा और उस वक्त के हुक्काम बाला के दरमियान जो इख्तलाफ और टकराव वजूद में आया उससे मुतालिक सही सनद रवायात मौजूद हैं। अहले सुन्नत में साबिका दर्स में ये आपकी खिदमत में जिक्र नुक्ता किया जाए, क्योंकि कुरआनियून के नाम से एक ग्रोह का तस्करा किया गया। इस तस्करा करने की ख़ास वजह थी। अभी हम फ़र्ज़ ये करते हैं, यानी मुसलमान अमूमन इस तरह से सोचते हैं कि आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दरमियान लौट के आ जाएं और बताएं और दोबारा यही दर्स दे उम्मत को कि फ़ातिमा तो बज़ात मिन्नी, कि मेरे वजूद का हिस्सा है फ़ातिमा, जिसने इन्हें अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, युदीनी मा आज़ाहा, या जिसने फ़ातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, या मैं उसके साथ हालत जंग में हूँ कि जो इनसे दुश्मनी करता है। तो इस जगह पे मतलब मकतबे तशय्यो तो यही तसव्वुर करेगा कि फ़ौरन हुक्म लगाएंगे कि इनके हक जो था जनाब सैयदा के साथ है। अहले सुन्नत ये तसव्वुर करते हैं फ़ौरन हुक्म लगाएंगे कि हक जो है वो खलीफे अव्वल के साथ है। हम यहाँ पे एक फ़र्ज़ करते हैं, अगर यानी कुरान यून के तरफ इशारा करने का मकसद ये था, और ये फ़िक्र असल में पाई जाती थी सहाबे किराम में, ये फ़िक्र पाई जाती थी सहाबे किराम के बाद दूसरी और तीसरी सदी हिजरी में भी ये फ़िक्र पाई गई। लिहाजा इस तफक्कुर से हमें ये बात पता लगती है कि ये मसला इस तरह से हल होने वाला नहीं है। अगर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दरमियान लौट के आ जाएं और फैसला कर दें कि जनाब सैयदा सलाम अलैहा हक पर थीं, तब भी मुसलमानों के दरमियान एक गिरोह मौजूद है जो कहेगा कि आपकी बात हुज्जत नहीं है, हम आपकी बात ही हमारे लिए हुज्जत नहीं है, आप हमारे लिए हुज्जत हैं सिर्फ कुरान लाने के लिए, कुरान की बात आप हुज्जत ही नहीं है। लिहाजा कुरान यून ये हसबुना किताब अल्लाह, जो खलीफे दुवम ने ये शआर बुलंद किया और अहले सुन्नत में मशहूर रिवायत है, यानी तीन सहाबे किराम से ये रिवायत वारिद हुई है, और इस रिवायत की तुरुक सही सनद हैं बुखारी में 7 मकामात पे और सही मुस्लिम में 3 मकामात पे ये रिवायत है कि वहाँ पे हसबना किताब अल्लाह कहा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में खलीफे दुवम उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और ये तफक्कुर फिर बाद में जारी हुआ, आगे बढ़ा, दीन में चीज़ें दाखिल भी की गईं, अहले सुन्नत खुद मोतरफ़ हैं, इसलिए खलीफे दुवम की जानिब से जो दीन के अंदर चीज़ें दाखिल की गईं उसको बिदात हसना से ताबीर किया गया। इसी तरीके से वक्त गुज़रा, तीसरी सदी हिजरी में बाकायदा ये तफक्कुर कवी हो गया, बाज़ उलमा की नज़र में कवी हो गया, और उन्होंने सुन्नत का ही इनकार कर दिया कि उन्होंने वाज़े तौर पे ये नज़रिया इख्तियार किया अहले हदीस तबके ने कि फ़क़त कुरान हुज्जत है, और ये तफक्कुर आगे बढ़ता रहा। पाकिस्तान में परवेजियत, चकड़ालवी ग्रोह या इस तरह से दीगर ग्रुप मौजूद हैं, अभी तो मिस्र में और दीगर इस्लामी ममालिक में ये ग्रोह बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस तफक्कुर का उम्मत इस्लामिया में कवी होना ये इस बात के ऊपर बेहतरीन दलील और शाहिद है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और फ़ैसला भी सुना दे जनाब सैयदा सलाम अलैहि के हक़ में, तो उम्मत में आज भी मिसले खवारिज ग्रोह मौजूद है, वो कहेंगे आप हुज्जत ही नहीं हैं, आपकी बात हमारे ऊपर हुज्जत नहीं है। लिहाजा इस मकाम पे हमें कुरान करीम से इस्तदलाल करना ज़रूरी है, अगरचे रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम भी हमारे यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस मुबारका जो अहले सुन्नत रुख से वारिद हुई हैं वो मौरिद नज़र खसूसी तौर पे रहेंगी, क्योंकि हम जिस चीज़ के मोतक़िद हैं और अक्सर उम्मत इस्लामिया का आज भी जो हिस्सा है, अक्सर उम्मत इस्लामिया वो हदीस कुरान और सुन्नत हर दो को हुज्जत समझती है, लेकिन मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम उसकी असल बुनियाद ही इन दो उमूर पर है, कुरान करीम व इतरत अहले बैत, इन दो के ऊपर उसकी बुनियाद है। ये इख्तलाफ तशय्यो में मौजूद नहीं है, तन्हा कुरान को तस्लीम करें और सुन्नत को तर्क कर दें। लिहाजा मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम की बुनियाद कुरान करीम व आइमाए अहले बैत चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ऊपर इनकी बुनियाद है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये गुज़िश्ता से एक मुतालिक हमारे पास नुक्ता था कि कुरान यून इस तफक्कुर से खसूसी तौर पे आगाह रहें, मुतालिया इसका करें, और ये बढ़ता चला जा रहा है, घट नहीं रहा, ये तफक्कुर आस्ता आस्ता वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मुतालिबा क्यों किया? इसको हम गुज़िश्ता दुरूस में भी तफसील से जान चुके हैं, सिर्फ इशारा आपकी खिदमत में करना मकसूद है कि जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का असल हदफ हकूमत इलाही, इस रूए ज़मीन के ऊपर हकूमत इलाही का क़याम व हुज्जत इलाही व खलीफत इलाही यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनका खलीफा बनना है उम्मत के अंदर, हाकिम बनना, हाकिम करार पाना है, क्योंकि हाकिम के बगैर हुकूमत नहीं होगी। हुकूमत इलाही होगी ही तब जब हाकिम इलाही हो। लिहाजा जनाब सैयदा सलामुल अलैहा ने उस वक्त क़याम किया कि जब लोगों ने दरवाज़े बंद कर लिए। यहाँ पे एक चीज़ साबित करने के एतबार से दुश्वारी पेश अहले सुन्नत को ख़ुसूसन आती है, क्योंकि मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में रवायात वाज़े हैं, लेकिन अहले सुन्नत में ये दुश्वारी पेश आती है। वो कहते हैं कि कहाँ पे ये वाज़े है कि माशरा जो है वो सारा का सारा ही माशरा इमाम अली अलैहिस्सलाम से रूगर्दान हो गया अगर रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी। जबकि मकतब तशय्यो का कहना है कि अक्सर और बेशतर अफराद ऐसे ही थे कि वो रूगर्दान हो गए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत से। और इसकी पर बेहतरीन शाहिद बुखारी मुस्लिम की रवायात हैं कि आज इन्हीं रवायात से इंशाल्लाह इस्तदलाल किया जाएगा। हमारे पास दो किस्म की रवायात इस मौजू के ऊपर दलील बनती हैं, और उससे ये चीज़ आशकार हो जाती है। हम ज़ईफ़ रवायतों को तर्क कर देते हैं अगर हम अहले सुन्नत जिन्हें ज़ईफ़ कहते हैं, अगरचे उनसे इस्तदलाल हो सकता है, क्योंकि इल्मे रिजाल अहले सुन्नत में इश्तिहादी है, इश्तिहादी तौर पे मौक़िफ़ इख्तियार करना उसमें होता है। लिहाजा रवायात के ऊपर हुक्म लगाने के अतबार से वसी गुंजाइश मौजूद है। हमारे पास दो किस्म की कौन सी दलीलें हैं? पहली दलील इस हवाले से ख़ुद ये आज जो हम हदीस मुतालिया करेंगे वो है सही मुस्लिम की। और दूसरी दलील हमारे पास आती है कि जनाब सैयदा सलामुल अलैहा का के जनाजे में अफराद का शिरकत ना करना और उनकी कब्र का पन्हा रहना। आया फ़कत चंद अफराद के लिए जनाब सैयदा सलामुल अलैहा ने यह कहा कि मुझे रात को दफनाया जाए, क्योंकि अहले सुन्नत में दिन के वक्त दफनाना फजीलत भी रखता है और बाज़ ने कराहत का हुक्म भी रात को लगाया है। दो तीन नमूने उनके पास मौजूद हैं कि जिसमें रात को दफनाने का वाक़या मौजूद है, लेकिन उनमें से एक जनाब सैयदा सलामुल अलैहा का वाक़या भी है। आया जनाब सैयदा सलामुल अलैहा वो इसलिए रात को दफन हुई कि सिर्फ चंद अफराद उसमें शिरकत ना कर सकें? जबकि अगर हम क़राइन और शवाहिद को जोड़ें तो लोगों को वापस भेज दिया गया कि अभी तदफीन नहीं होगी, आप लोग सब अपने घरों में चले जाएं। ये जो वाक़या हुआ है ये वाक़या खुद शाहिद है कि उस माशरे से नाराज़ थी जनाब सैयदा, उस माशरे से गिलामंद थी, लोगों के घरों में गईं, क्योंकि वहाँ पे यकीनन जो जनाब सैयदा का साथ देता उसके लिए जानी माली मुश्किल पेश आ सकती थी। यानी जो मुश्किलात जनाब सैयदा सलामुल अलैहा को पेश आ रही हैं, तो वो जिसका कद काठ जो है उम्मत के दरमियान जनाब सैयदा से कमतर है वो बच जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा वाकई है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो गुज़रते थे, सलाम करते थे तो लोग रुख फेर लेते थे, और शहादत जनाब सैयदा सलामुल अलैहा के बाद लोगों ने असलन सलाम का जवाब देना भी तर्क कर दिया। पहले तो रुख फेर के जवाब दे देते थे, जनाब सैयदा सलामुल अलैहा की शहादत के बाद लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सलाम करते थे वो जवाब ही नहीं देते थे। आप देखिए ना क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मकाम और मंजलत रसूलुल्लाह ने बयान की, और अहले मदीना के दरमियान इस अजीम तरीन हस्ती उसका क्या मकाम था। आप ख़ुद अपने महल्ले में भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अपने महल्ले की गली से गुज़रें और जब आप गुज़रें तो लोग नफ़रत के साथ रुख फेर लें, क्या वो निगाहें और वो अंदाज़ इंसान को चुभेगा नहीं? और फिर अगर आप किसी को उधर सलाम करें वो सलाम का जवाब ही ना दें और नफ़रत से मुंह फेर ले, ये माशर के अंदर अफराद के लोगों की सूरत हाल थी, ये अहले मदीना के अंदर की सूरत हाल थी। नफ़रत का इजहार बरमला तौर पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ किया करते, और ये बुखारी मुस्लिम और दीगर कुतुब में सही सनद तरीक़ों से आई है। लिहाजा गिलामंद थी, इससे हमें यह बात पता लगी के मुआशरा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रुख फेरा था उसने रुख, क्यों फेरा वो रुख, उसके असबाब हैं। बस ये हमें बात पता लग गई कि खिलाफत का झगड़ा शुरू हुआ जैसे ही रहलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, उसी वक्त खिलाफत का एक झगड़ा जन्म ले गया। बाज़ ने वहाँ पर जज्बात का इजहार किया, उसके बाद गायब सकीफ़ा में उन्होंने खिलाफत के लिए काविशें और कोशिश की और वहाँ पे उन्होंने खलीफा चुन लिया। लेकिन दूसरी तरफ उम्मत इस्लाम, बस उम्मत इस्लामिया में सकीफ़ा के वाक़े में एक ग्रोह ने खलीफ़े अव्वल का इंतखाब कर लिया। वो इंतखाब कैसे हुआ, अहले सुन्नत शिया दोनों कुतुब में उसकी तफसीलात वारिद हुई हैं। उसके मुकाबले में उम्मत इस्लामिया में दूसरा ग्रोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद तमाम शिया सुन्नी मुत्तफिक हैं इस बात पे कि दावेदार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे और उनकी खिलाफत और इमामत में उनके साथ देने वाले बनी हाशिम और बाज़ असहाब मौजूद थे। अब चूंकि ये बात मदीना की है, मदीना उस वक्त छोटा एक शहर था, कोई बहुत बड़ा फैला हुआ शहर नहीं था, बकिया अतराफ़ की आबादियों में रहा करते थे लोग। लेकिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अब जब ये इख्तलाफ बढ़ा तो अंसार, क्योंकि अहले मदीना असल कौन थे, ये तो महाजरीन थे जो सारे के सारे अंसार थे कि जो मदीना मुनव्वरा के अंदर ज़िंदगी बसर किया करते थे और बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने जब महाजरीन वहाँ तशरीफ़ लाए और अंसार में अजीम तरीन शख्सियात निकली, बड़े बड़े वाक़यात हैं उनके और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुहिब रहे हैं, उनके हमायती रहे हैं। लेकिन जब ये खिलाफत का मसला पैदा हुआ उम्मत इस्लामिया में तो रियासत तलबी के जज्बात सीनों में उभर आए। लिहाजा सकीफ़ा में अंसार सबसे क़ुव्वत रखते थे, यकीनन जो महाजरीन हैं वो अंसार के मुकाबले में क़ुव्वत हासिल नहीं कर सकते। वहाँ पे औस और खजरज के दरमियान वो पुराना दोबारा टकराव ज़िंदा हो गया और इस टकराव के नतीजे में महाजरीन को क़ुव्वत मिल गई और ये वजह बनी कि अंसार, क्योंकि कबायली सिलसिला था, आज भी आप जाएँ पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी जगहों पे कबायली सिलसिले आबाद हैं, उन कबायली सिलसिलों में सरदार जो फ़ैसला करें या घर उस कबीले के बड़े जो फ़ैसला करें अक्सरियत उसी के मुताबिक ढल जाती है। हत्ता कि बाज़ ऐसे वाक़यात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बाज़ ऐसे वाक़यात हैं कि गांव के गांव फ़कत इसलिए शिया हुए हैं, सुन्नी थे सारे, इसलिए शिया हुए हैं कि चंद नस्लों पहले जो उनके बुज़ुर्ग थे उनकी किताब निकली और उस किताब में अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हिमायत है। इस फ़ज़ाइल और हिमायत की बुनियाद पे वो वहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकतब को उन्होंने कबूल किया। इस कदर ज़हनियत मौजूद है, लिहाजा कबायली सिलसिले इसी तरीके से होते हैं। इसलिए अंसार के जब सरदारों ने, यानी सरदारों में से अक्सर बेशतर सरदारों ने जो खलीफे अव्वल उनकी खिलाफत को कबूल कर लिया तो नीचे के अफराद तो उनकी तबाह करेंगे ही करेंगे। इस क्योंकि हर जगह पे सरकर्दा अफराद होते हैं, बड़े बड़े अफराद उस कबाइल के होते हैं। ये अगर हम इस नक्शे को अगर हम देखें, एक तरफ दावेदार हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अहले सुन्नत के मुताबिक 6 महीने ये इख्तलाफ जारी रहा, अहले सुन्नत के मुताबिक 6 महीने ये इख्तलाफ जारी रहा। 6 महीने के बाद जब जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल अलैहा की शहादत हो गई, अहले सुन्नत के मुताबिक वफात हो गई, तो फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैयत कर ली और बैयत भी खुद किताब में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम की रवायात में है कि इजबारी, एक नोए इजबारी बैयत थी, यानी पूरे माशरे का प्रेशर और दबाव था, इसलिए उन्होंने ये खिलाफत को कबूल किया अहले सुन्नत ताबीरात के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे हम इससे पहले वाले मरहले को देखें, क्योंकि हयात फ़ातिमा सलामुल अलैहा हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम 6 महीने के बाद वाले वाक़यात के ऊपर तबसरा नहीं करेंगे, उससे पहले वाले वाक़यात के ऊपर। अगर पहले वाले वाक़यात को हम देखें तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो खिलाफत के लिए काविशों में मशगूल थे, बनी हाशिम वाले उनके हमराह थे और मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स होती रहती थी। इब्तदा में जो मरकज़ था वो जनाबे फ़ातिमा सलामुल अलैहा का घर था, यह अहले सुन्नत सही सुन्नत रवायात में वारिद हुआ है और इतला मिलती रहती कि अब इस जगह पे नशिस्त हुई है खिलाफत के लिए और अफराद को इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी तरफ भी क्योंकि अंसार का बहुत बड़ा अंसार कबीला था और माशरा था, जब इन्होंने खलीफ़ अव्वल का साथ दिया तो तो यहाँ पे एक बड़ी तादाद और बड़ी कुव्वत जो है वो खिलाफत हज़रत अबू बकर और उनके हमायतियों को मिल गई। इसके मुकाबले में अगर आप आएँ तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनको अब तकवियत के लिए वसाइल जम करने की ज़रूरत पेश आ रही है। इस वसाइल की जम आवरी में सबसे बड़ा वसाइल का वजूद का माली वसाइल का ज़रिया उस वक्त फदक था। फदक एक गांव गांव का नाम है, करिया है, एक बाग नहीं है। फदक कई बागों का मजमूआ है, उसमें बहते पानी के कई चश्मे हैं, कई नखलिस्तान थे उसके अंदर। यहाँ तक कि जब खैबर की फतुहात हुई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, तो जनाबी उम्मुल मोमिनीन का कहना है कि पहली मर्तबा हमने पेट भर के खजूरें खाई हैं, उससे पहले तो इस कदर फ़क्र था कि खजूर भी नहीं नसीब होती थी। लिहाजा खैबर के मौके पे, क्योंकि मदीना के अतराफ़ में यहूदी आबाद हुए और उन्होंने वहाँ पे खूब काश्त की, ज़रात की और जगहों को उन्होंने बनाया, बड़े बड़े किले आबाद किए। लिहाजा फदक एक ऐसा मकाम था जो एक गांव था, कई नखलिस्तान थे उसमें, कई बहते चश्मे थे और वो नखलिस्तान खजूरों के दरख्तों से भरे हुए थे। ज़रात और आपाशी के अतबार से बेहतरीन वो जगह थी। लिहाजा उस वक्त के माशरे में, यानी उस वक्त रहलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, सबसे बड़े वसाइले माली व खुराक वो फदक की जगह से आते थे। ये जनाब फ़ातिमा सलामुल अलैहा के मातहत था, ये फदक जनाब सैयदा सलामुल अलैहा के मातहत था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मीटिंग्स करते जनाब सैयदा के घर में, यहाँ तक कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की सय्यु सनद रिवायत है और अहले सुन्नत के अक्सर और बेशतर मुहक्किकीन ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की इस रवायत को सय्यु सनद करार दिया है। उसके मुताबिक खलीफे दुवुम वो गए और उन्होंने घर के बाहर से ही आवाज़ बुलंद की और पूछा कि कहाँ है अली इब्न अबी तालिब और उनके अफराद, और कहा कि मुझे ख़बर मिली है कि यहाँ पे वो लोग मुशावरत आपस में करते हैं, जिसे हम मीटिंग कहते हैं। और फिर बाद में धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ, पहले कहा कि आप बड़ी इज्जत और ताज़ीम रखती हैं, लेकिन ये इज्जत और ताज़ीम इस अमर में माने नहीं बनेगी कि अब अगर इधर मुशावरत या मीटिंग हुई तो मैं इस घर को उसके अहल समेत जला दूंगा, इस घर को आग समेत लगा के जला दूंगा, यानी मुनहदम कर दूंगा इस घर को। ये सय्यु सनद रवायत है अहले सुन्नत में, मुसन्नफ़ इब्ने अभी शैबा में। अब ये मीटिंग्स मुंतकिल होगी दीगर जगहों पे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम क्योंकि अजमत घराना सैयदा जहरा, उसके तकद्दस और एहतराम और ताज़ीम को मद्देनज़र रखते हुए मुतादे जगहों पे मुशावरत शुरू हुई। यहाँ पे अब दबाव और प्रेशर ईजाद करना शुरू कर दिया गया। लिहाजा पहला काम ये किया कि फदक को ले लिया गया, क्योंकि फदक रहता तो आराम से लश्कर कशी हो सकती, अफराद तक वसाइल मुहैया हो सकते। एक माली क़ुव्वत का आना, वो अगर मुहैया हो जाए और फिर अफराद को तैयार किया जाता है, लिहाजा हुकूमत की एक बड़े पैमाने पर राह हमवार हो सकती थी। आज भी हुकूमतें यही करती हैं कि अगर सियासी तौर पर किसी भी रियासत में अगर हुकूमत के मुखालिफ ग्रोह को दबाना हो तो वो अफराद और उनके माली वसाइल सबसे पहले इनको कंट्रोल करते हैं, और अफराद में भी जो हेड होते हैं, सरकर्दा अफराद हैं, मुतहर्रिक और फ़ाल अफराद हैं, सबसे पहले आके उनको गिरफ़्तार करते हैं। यानी सरकर्दा अफराद से मुराद फ़कत रईस या रुआसा नहीं है, बल्कि उससे मुराद वो जांबाज भी हैं कि जो फिदाकारी दिखाते हुए फ़ौरन फिदा होने के लिए आमादा हो जाए। लिहाजा हुकूमतें हर दौर में ये करती रही हैं कि वो माली वसाइल उसको सबसे पहले काबू में करते हैं और वो अफराद कि जो उस हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। इसलिए जनाब सैयदा सलामुल अलैहा से फदक को लिया गया। अब चूँकि रहलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा ताज़ा है, उम्मत के दरमियान वो फ़ज़ाइल, वो इज़्ज़त, वो एहतराम, वो ताज़ीम, वो वाक़ियात सारे ज़िंदा हैं, इसलिए जनाब सैयदा आगे बढ़ी। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तो नफ़रत से देखा करते थे, उनसे तो सलाम और दुआ ही नहीं करते थे उस माशरे के लोग। लेकिन जनाब सैयदा सलाम अलैहा, क्योंकि वाकयात ही इस कदर ज़्यादा हैं उनकी तज़ीम और इज़्ज़त और तकरीम के, वो उम्मत के जहनों में मौजूद थी, इसलिए आईं और आगे बढ़ीं। और जनाब सैयदा सलाम अलैहा ने मुतालबा किया फदक का। यहाँ पर एक शुबा ईजाद किया जाता है, उनका मुतालबा फदक का बेअनवान मीरास था या बेअनवान हिबा था। मीरास की तारीफ़ आप जान चुके हैं, मीरास का मतलब है कि एक शख्स वो वफात पा जाए तो उसका जो माल बचा हुआ होता है वो बाइनवान मीरास शरीयत में अहकाम, शरीयत के अहकाम उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। इस मकाम पे हम हिबा को देखते हैं। आपकी खिदमत में हिबा का एक इजमाली तारुफ कराया गया था, आज हम उसको कदर तफसील से देखते हैं, क्योंकि लफ्ज़ हिबा हमारे माशरे में राइज लफ्ज़ नहीं है और अफराद अमूमन इसको जानते नहीं हैं। इसकी बुनियादी जो मानी है शिया सुन्नी उसमें कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। ज़ैली तौर पे अहकाम होते हैं उनमें इख्तलाफात आ जाते हैं, वो अहले सुन्नत के मकातब फ़िकही उनमें भी इख्तलाफ पाए जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हिबा कहते किसे हैं। ये तीन असलाहत करीब करीब हैं। एक असलाह है हदिया, जिसे गिफ्ट भी कहते हैं, तोहफा भी कहते हैं। दूसरी असलाह है सदका, तीसरी असलाह है हिबा, क्योंकि तीनों में मुफ्त में माल दिया जाता है, जिसे कहते हैं मजानी माल, मुफ्त में फ्री में माल देना, फ्री में किसी की मिल्कियत बनाना। हमने कल हिबा में मुआवजा और गैर मुआवजा भी पढ़ा कि हिबा में इवज़ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। फुकाहे इमामिया ने इस बात को दर्ज किया है कि यहाँ पे इवज़ से मुराद ये नहीं है कि ये मुफ्त का माल नहीं होगा, नहीं, हिबा के मुकाबले में इवज़ नहीं होता। ये जो हिबा की किस्में हैं, ये इवज़ का होना ना होना वो दीगर वजूहात की बुनियाद पर है, कि अभी हम हिबा के ज़ैली मसाइल में दाखिल नहीं होंगे। सिर्फ तारीफ़ को बयान किया जाए और इन तीनों में फ़र्क को आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा, ताकि मालूम हो जाए कि हिबा कहते किसे हैं हम। फिर यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि अगर फदक जनाब सैयदा सलाम अलैहा के हाथ में था, फिर तो मीरास का मुतालबा बातिल है, क्योंकि मीरास तो तब होती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रहलत हो जाए, और रहलत से पहले तो इसका मतलब है फदक उनके हाथ में नहीं था। फिर छीना कैसे, जब हाथ में नहीं था तो छीना कैसे या लिया कैसे गया, हुकूमत ने उसकी पर कब्ज़ा कैसे किया। और अगर हम हिबा के कायल हो जाएं तो फिर मीरास की बात कहाँ से आती है। ये अमूमन एक शुबे के तौर पे उभारा जाता है। हम पहले हिबा और मीरास को तो समझें कहते किसे हैं। हिबा और मीरास कहते किसे हैं, ये जो आपकी खिदमत में मैंने पीछे एक तस्वीर कशी की है, उसको इंशाल्लाह ताला हदीस से भी हमारे सामने वो साबित होगी। हिबा को हम देख लें कि आपकी खिदमत में मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़िकी कुतुब से बयान किया जाता है कि ये मारूफ़ फ़कीह बुजुर्गवार नजफ़ अशरफ में है। हम इब्तदाई, चूँकि उनकी किताब इब्तदाई है, इब्तदाई किताब से आसान तरीके से बयान किया जाता है कि शेख बाकिर इरवानी हाफिज़हुल्लाह ताला उनकी किताब दुरुस्त तमहीदी फ़िल फ़िक्हिल इस्तदलाली जल्द नंबर 2 है। मारूफ़ फ़कीह बुजुर्गवार हैं, हौज़िल्मिया में इनकी किताब निसाब के तौर पर राइज भी है, यानी निसाब का हिस्सा शुमार होती है। इन्होंने उसको बयान किया है, क्योंकि जो निसाब में हिस्सा शुमार हो वो एक फ़कीह की निगाह से नहीं होगी, वो तमाम मकतब को मद्देनज़र रखते हुए बयान किया जाता है, कहीं इख्तलाफ हो जाए तो वो बयान करेंगे। हिबा की क्या तारीफ़ है, इन्होंने हिबा बयान किया, हिबा अक्दुन, जब अक्द कहते हैं इसका मतलब है कि दो तरफ़ैन उसमें शरीक होंगे। अक्द और ईका फ़िकही दो असलाहत हैं। अक्द होता है तरफ़ैन के दरमियान, ईका होता है यक तरफा। अक्द अरबी ज़ुबान में भी इसके डिक्शनरी की माना किए हैं, लुग़वी में माना किए हैं, दो चीज़ों का आपस में इस तरह से जुड़ जाना कि जुदा ना हो। अक्द यानी एक शय का बंध जाना है, सही है। यही मामलात की दुनिया में जो अफराद के दरमियान मामलात मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात अंजाम पाते हैं, उनमें ये इस्तलाह मौजूद होती है। यानी फ़िकही मसाइल में शिया सुन्नी दोनों मकातब फ़िक्र में जो माशरे के अंदर मामलात अंजाम पाते हैं उनको बयान करने के लिए, उनके फ़िकही मसाइल को बयान करने के लिए अक्द की इस्तलाह वो ज़िक्र की जाती है। अक्द यानी दो तरफों के दरमियान एक मामले का होना, मसलन निकाह, निकाह अक्द है, मर्द और खातून के दरमियान शरी ताल्लुक जो कायम होता है, शरी और कानूनी ताल्लुक, इसे अक्द निकाह से ताबीर करते हैं। इसी तरह ख़रीदो फरोख्त, दुकानदार और गाहक के दरमियान जो कानूनी और शरी ताल्लुक कायम होता है इसे अक्द बैय कहते हैं। ख़रीदो फरोख्त, ख़रीदो फरोख्त एक तरफा कभी नहीं होती, गाहक देगा कुछ और उसके मुकाबले में कुछ लेगा, दो बंदों के दरमियान होता है। इसी तरह हिबा भी ये दो अफराद के दरमियान होता है, एक हिबा देने वाला जिसे वाहिब कहते हैं और एक जिसे हिबा किया गया है, सही है, मौहूब जिसे हिबा किया गया है, ये दो के दरमियान है। इसलिए कबूल और ईजाब इसमें शर्त है, इसके बगैर अक्द है तो इसमें कबूल और ईजाब भी शर्त है। यानी जो देने वाला है जब वो माल देगा तो जिसको दिया गया वो कबूल भी करे, ज़रूरी नहीं अल्फाज से कबूल करे, कोई ऐसा अंदाज़ जो उस माशरे में इस बात के ऊपर दलील बन जाए, इस बात की तरफ निशानदेही करे कि इसने कबूल कर लिया, वो काफ़ी है। दुरुस्त, बस अगर देने वाला तो दे लेकिन लेने वाला कबूल ना करे वो हिबा कहलाएगा, वो हिबा नहीं कहलाएगा। लिहाजा हिबा होता ही तब है कि देने वाला दे और लेने वाला उसे ले। बस इधर हमारे पास अक्द की तशरी आ गई, अलहिबा तो अक्दुन, हिबा क्या है, अक्द। लेकिन तशरी आगे देखें कि किस तरह से वो कौन सा अक्द है, यतदम्मनो तमलीक ऐनिन बिला इवज़िन, ये वो अक्द है जो एक ऐन की मिल्कियत को शामिल होता है लेकिन वो इवज़ के बगैर हो। यानी ऐन से मुराद है ऐसी शय जो मिल्कियत बन सके। अब हवा में परिंदे उड़ रहे हैं, कोई यहाँ पे साथ आपके दोस्त खड़ा हो, आप कहें ये जो ऊपर जितने कबूतर उड़ रहे हैं ना ये सब तुम्हें मैंने हिबा किए, हिबा हो गई है। इस तरह के हिबा करने लगे तो आए रोज़ ही हिबा शुरू हो जाए। अब वो मछलियाँ जो किसी से नहीं पकड़ी जाती वो तैर रही हैं, वो कहें ये जो इतना हिस्सा है ना ये सारी मछलियाँ आपकी हुई, वो बन ही नहीं सकती, उसकी मिल्कियत में नहीं आ सकती। ये बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि असल मिल्कियत माशरे में शुमार ही नहीं होती, ऐन वो ऐसी चीज़ शुमार ही नहीं होती कि उसे तमलीक किया जाए। बस ऐन और तमलीक की थोड़ी तशरीह की ज़रूरत है, लेकिन मुख्तसर आपके सामने इशारा करना मकसूद है। ऐन यानी वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो दे दिलाई जा सके, ऐसी चीज़ ना हो कि जो दे दिलाई ना जा सके। वैसा ये कि हवा को पकड़ लो, मैंने हवा हिबा कर दी, वो कहाँ से हवा को पकड़े। लिहाजा ऐन ऐसी, ऐन से मुराद है ऐसी चीज़ जो दे दिलाई जा सके, मुख्तसर समझने की खातिर बयान किया जाए। मसलन चीज़ें हैं, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ज़मीन है, घर है, सवारी है, इंसानी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये ऐन, इनका तमलीक करना यानी एक का दूसरे को मालिक बना देना। और जो देने वाला है वो जब दे रहा है तो इसके एवज़ कोई चीज़ असलन उसका मुतालबा ना करे। लिहाजा हिबा में मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताबिक बिला एवाजिन उसकी कैद मौजूद है, एवज का मुतालबा नहीं करेगा देने वाला। वैसे यहाँ पे आए आपको बिलफर्ज़ अगर कोई शख्सियत या कोई फ़र्द रहम दिल शख्स वो बिलफर्ज़ कोई आपको गाड़ी दे देता है या आपको ज़रूरत ज़िंदगी की कोई और चीज़ घर दे देता है या घर के अंदर फ्रिज है, फ्रिज आपको दे दिया। अब जब उसने फ्रिज आपको दिया और उसके इवज़ कुछ कबूल नहीं किया, वो देने वाला है, आपने भी उसे कबूल कर लिया, ये क्या कहलाएगा मामला, हिबा कहलाएगा। अगर इवज़ के तो इसके मुकाबले में इवज़ भी वो मुतालबा करे कि देखो मैं तुम्हें फ्रिज दे रहा हूँ, इसके मुकाबले में कुछ मुझे फलां फलां चीज़ दो, ये हिबा नहीं कहलाएगा। लिहाजा हिबा में बिला इवाजिन का तर्जमा बनता है मुफ्त, ज़रूरी है कि अगले को मुफ्त में वो उसके मुकाबले में कुछ उससे ना ले, ना शुक्रिया ले ना कुछ और ले, फ्री और मुफ्त में उसे मुंतकिल करे। अच्छा, यहाँ पे ये मुसलमानों के दरमियान वाज़े तौर पे मामला मौजूद है, इसको बकिया साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है वाहिब है और मौहूबुल लहू है जिसको हिबा किया गया है। वाहिब हिबा करने वाला, मौहूबुल लहू जिसे हिबा किया गया है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, सदका भी तो फ्री में मुफ्त में होता है, हदिया भी मुफ्त में होता है, हदिये में और हिबा में क्या फ़र्क है? क्योंकि हदिये से बहुत करीब हो जाता है या नहीं। हदिया होता है, हाँ, हदिया और हिबा और सदका, इन तीनों में इस इनवान से तो इश्तराक पाया जाता है कि तीनों फ्री हैं, मुफ्त में हैं, बिला इवाजिन हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क ये है कि हदिया हमेशा अगले की इज्जत और तकरीम के पेश नज़र दिया जाता है। अगर किसी की इज्जत और तकरीम आपने करनी हो तो उसे कहते हैं ये हदिया आपका। मिसाल के तौर पे आजकल मसाइले सुन्नत में कोई तरावी पढ़े या हिफ्ज़ कुरान करे तो वहाँ पे उसे वो पैसे दे देते हैं, या हमारे यहाँ कोई मजालिस पढ़ के आए तो उसे हदिया के नाम से दे देते हैं कि ये हदिया है, ये हम आपकी मेहनत का सिला तो नहीं दे सकते, ये आपके लिए हदिया। इज्जत और तकरीम, इज्जत और तकरीम के तौर पे जब फ्री में मुफ्त में कोई माल दिया जाए वो क्या कहलाता है? हदिया। अच्छा, सदका क्या है? सदका में भी फ्री में माल है लेकिन सदक़े में शर्त है क़ुर्बतन इलल्लाह। अगर उसने क़ुर्बतन इलल्लाह नहीं नियत की तो सदका नहीं होता। हमारे यहाँ तो बलाएं भगाने के लिए सदक़ात दे के गरीब के मैदे को ऐसी फैक्ट्री समझी हुई है कि सारी बलाएं एक जगह जमा करें और वो रोटी का नवाला इसे खिला दें तो ये सख्त तरीन जान उसे हज़म कर लेती है। एक बातिल हमारे यहाँ फ़लसफ़ा पाया जाता है, सदका है क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के करीब होने के लिए ये मैंने अमल अंजाम दिया है। इस तरह कोई ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी है, बल्कि अल्लाह ने वो दूर करना है नुकसान या बला या ज़रर या मरज़। अगर अल्लाह ही को राज़ी नहीं करेंगे तो कहाँ से वो सदका कबूल होगा? लिहाजा सदक़े में भी फ्री में माल जाता है लेकिन सदका क्यों है? अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए, नीयत ज़रूरी है कुर्बतन इलल्लाह। हिबा में ये दोनों कायदे नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि इज्जत एहतराम के लिए दिया जाए, ना कुर्बतन इलल्लाह उसमें शर्त है, लिहाजा हिबा का दायरा जामेतर हो जाता है। हिबा है कि किसी को मिल्कियत बना देना किसी माल या किसी शय का, अगले को बिला इवज मुफ्त में मजानन मिल्कियत बना देना, ये हमारे पास हिबा आता है। इसका ये मतलब है वाहिब जिंदा होगा तो अगले को देगा ना कुछ, और अगला अगर उसको कबूल ना करे और अपनी मिल्कियत में ना लेके आ जाए तो हिबा होगा। बस यहाँ पे हमारे पास ये बात आई। अगर हम ये कहते हैं कि फदक जो गांव था और कई नखलिस्तानों और पानी के चश्मों के ऊपर मुश्तमिल इलाका था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा किया है, तो इसका ये मतलब है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खित्ते को या उस सरज़मीन को जनाबे सैयदा फ़ातिमा सलामुल अलैहा की मिल्कियत में करार दिया और उन्होंने बाइनवाने मिल्कियत उसे कबूल कर लिया। और हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, तारीखी और रवाई शवाहिद, कि जनाबे सैयदा सलामुल अलैहा के वहाँ पे उनकी तरफ से कारिंदे उधर काम काज किया करते थे। जैसे यहाँ पे ये बात आई, आया अब सवाल ये पैदा होता है, मीरास के तौर पे थी फदक का मुतालिबा या हिबा के तौर पे थे? क्योंकि दो अलग अलग बाब हो गए। मीरास होता ही तब है जब वफात हो जाए मैयत की और तरके में जो कुछ मिले उसे मीरास कहते हैं। हिबा होता है कि ज़िंदगी में कोई चीज़ किसी के हवाले कर दी जाए और वो उसका मालिक बन जाए और वो उसे कबूल करे। इस हवाले से हम सही मुस्लिम की एक रवायत पढ़ते हैं। ये रवायत सही मुस्लिम में अहले सुन्नत तुरुक के मुताबिक सही सनद है, और अहले सुन्नत में अगरचे खबर वाहिद से अकायद नहीं बनते, खबर वाहिद अकीदे का सबब नहीं बनती, खसूसन उसूल में, उसूल अकायद जो हैं उनमें तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा ताजुबावर बात है कि अहले सुन्नत बुखारी मुस्लिम की खबर आहाद हैं लेकिन उसके बावजूद वहाँ से अकीदा ले लेते हैं। खैर, अभी हम उस तरफ नहीं जाते, खिदमत में आपकी अर्ज़ किया जाए कि एक रिवायत ज़िक्र की है जो उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा से है कि वो बयान करती हैं। यह है किताबुल जिहाद वसीयर, ये किताब नंबर 32 है, और इसमें हदीस नंबर 52 आपकी खिदमत में। इसके अंदर बाब है बाब कौलुन नबी ला नुवर्रिस या ला नूरिस मा तरकना फहुआ सदक़तुन, ये बाब है। इसकी हदीस नंबर 52 है और इसकी तरतीब हदीस की मुख्तलिफ तरतीबें हैं। उनमें से बाब की तरतीब के अगर हम इस किताब की तरतीब के मुताबिक देखें तो हदीस नंबर 52 है। वा इल्ला 4580 उसकी एक रकम है और एक है 1769 1759 और 4580 ये हदीस नंबर है। इसमें वो बयान करती हैं, अब इस वाक़े को तवज्जो से आप देखें। अन आयशा अन्नहा अखबरत हु, उरवा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मुझे जनाब आयशा ने बयान किया अन्न फ़ातिमा तबिनत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के फ़ातिमा बिनत रसूलिल्लाह अरसलत इला अबी बकरिन सिद्दीक, जनाब अबू बकर सिद्दीक के पास जनाब सैयदा सलामुल अलैहा तशरीफ़ ले गई। तसअलुहु मीरासहा मिन रसूलिल्लाह, और सवाल क्या किया, मीरास का सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मीरास थी उसका मुतालबा किया खलीफ़े अव्वल से। मिम्मा अफा अल्लाहु अलैहि, कि वो जो अल्लाह ने मालिफ़े के तौर पे उन्हें दिया था, बिल मदीनते मदीना में, मदीना में मालिफ़े में से जो दिया था, वह फदकिन और फदक का मुतालबा किया, वमा बकिया मिन खुमस खैबर और खैबर के मकाम पे जो खुमस बनता था उसका मुतालबा किया। बस इधर मुतालबात कितने आ गए, एक है मदीना का लफ्ज़ आया, एक है फदक का लफ्ज़ आया और एक है खुमस खैबर का लफ्ज़ आया। तवज्जो करें इधर, इधर जनाब सैयदा सलामुल अलैहा ये रवायत वाज़े तौर पे बयान कर रही है कि कितने मुतालबात हैं, तीन। एक है मदीना में मालिफ़े का, यानी मदीना का लफ्ज़ अभी सिर्फ इतना रखें, मालिफ़े में से जो कुछ मिला मदीना में, नंबर दो मालिफ़े में से जो मिला फदक की सूरत में, नंबर तीन खैबर के मकाम पे जो खुमस मिला। इधर हमें खुमस और मालिफ़े को समझना होगा, ये दो अलग अलग बाब हैं। तीन कलिमात हैं सूरह अनफाल में और सूरह हश्र, इनमें ये इस्तेमाल हुए हैं। एक है अनफाल लफ्ज़, दूसरा है लफ्ज़ खुमस जिसे खुम्स भी कहते हैं हम, और तीसरा है मालिफ़ई, मालिफ़ई, ये तीन हमारे पास लफ्ज़ आ जाते हैं। इंशाल्लाह अगले दर्स में इनकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। लेकिन इस रवायत के मुताबिक जनाब फ़ातिमा सलामुल अलैहा के मुतालबात कितने थे, तीन। मदीना में अमवाल, नंबर दो फदक के अमवाल और नंबर तीन खैबर का जो खुमस बनता है वो अमवाल। मालिफ़े उस माल को कहते हैं, शिया सुनी दोनों मुत्तफिक हैं क्योंकि कुरान करीम ने इसकी वजाहत कर दी। मालिफ़े की तशरीह किसकी ने, कुरान करीम ने ख़ुद सूरह हश्र में बयान की कि उस माल को कहते हैं कि मुसलमान फतह करने के लिए एक इलाके में तशरीफ़ ले गए, लेकिन कबल इसके कि मुसलमान वहाँ पे हमला आवर हों और मुसलमानों के लश्कर उधर जंग में मशगूल हों, उन्होंने पहले ही अपने आप को सरेंडर या सर तस्लीम ख़म कर दिया और मुसलमानों में ना घोड़े दौड़ाए गए, ना कोई तलवार चली, ना कोई खून बहाया गया और ना मुसलमानों को जहमत और मेहनत करने पड़ी, वो पहले ही सर तस्लीम ख़म हो गए और आपस में मुआहदा या मुआमला कर लिया। अब जो अमवाल आएंगे वो किसके हैं, क्योंकि अगर मुसलमानों ने भाग दौड़ की होती और घोड़े दौड़ाए होते, उनकी जहमतें हैं, मुशक्क़तें हैं, उन्हें ज़ख़म आए हैं, खून बहा है और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से उन्होंने उस जगह पे कुफार को वहाँ पे सरनगूं किया है, उस जगह पे मुसलमानों का हक़ बनता है, अल्लाह ताला ने हक़ रखा है, उस हक़ को गनीमत कहते हैं। इसमें खुमस ले लेंगे रसूलुल्लाह, बकिया मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाएगा। पहले जमा हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका खुमस अपने पास रख लेंगे और अपनी मिल्कियत बनाएंगे, और उसके बाद बकिया क्या है वो मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पे घोड़े नहीं दौड़े गए, जहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं हुई, कोई खून नहीं बहा, कोई जहमत मुशक्क़त मुसलमानों को उठाने नहीं पड़ी, वो सब के सब माल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाएंगे। लिहाजा मालिफे के इनवान से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अमवाल मिले। मदीना में यहूदी था एक, उसने भी अमवाल दिए, ज़मीनें दी, कुछ बाग दे दिए मदीना मुनव्वरा के अंदर। मदीना मुनव्वरा में कुछ बागात और कुछ ज़मीनें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत, ज़ाती मिल्कियत थी। और इसी तरीके से फदक से बाज़ चीज़ें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए करार दे दी, बकिया बैतुलमाल में शामिल कर दिया। इनमें से बाज़ अमवाल ऐसे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही बाज़ अफराद के सुपुर्द कर दिए। जनाब उम्मे ऐमन है, उन्हें एक बाग दे दिया। इनको कहते हैं सफ़ाया रसूल, सफ़ाया सौद फे अलिफ ये अलिफ, सफ़ाया रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमवाल अपनी ज़ात के साथ मुख्तस करके फिर उन्हें खर्च किया, इन्हें कहा जाता है सफ़ाया रसूल। और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मिल्कियत शुमार होता है। अब हम आए, हमारे पास कुरानी आयात और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम और अहले सुन्नत में मुतअद्दिद रिवायात हैं, जिनका आपस में अगर हम मुवाजना करें तो जुबरान हो जाता है, बात सही सनद या हसन दर्जे की बन सकती हैं। इल्म रिजाल में जो अहले सुन्नत का इज्तिहादी नज़रिया है, मसलन अतिया औफ़ी के साथ के ज़ैल में आई हैं या इब्न अबी दारिम से आई हैं, अहले सुन्नत ने उनकी पर जरह मुख्तलिफ अंदाज़ में की है, बाज़ ने उनकी तौसीक भी की है और बाज़ ने जरह भी की है। बहरहाल वो बहस हम आखिर में उसको लेके आएंगे। उनसे ये पता लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा सलाम अलैहा को बुलाया और बुलाने के बाद फदक जनाब सैयदा को दे दिया। अगर हम इन रवायात को मान लें अहले सुन्नत, क्योंकि मकतब तशय्यों में तो ये मसला ही नहीं है, उनके यहाँ तो वाज़ है सही सुन्नत रवायात और वाज़ तौर पे ये कौल तवातुर के साथ तारीख़ी हकायक की सूरत में भी मौजूद है और सीना बा सीना भी चला आ रहा है कि फदक हिबा कर दिया गया, फदक मीरास में नहीं मिला, फदक हिबा किया गया। अब फदक को अगर हम हिबा के तौर पे निकाल लें तो इधर तब भी तीन मुतालबात बन जाते हैं। मदीना के जो अमवाल थे उनमें मीरास का मुतालबा किया, फदक के अतबार से हिबा के इनवान से मुतालबा किया, और खैबर से जो खुमस था उसका खुमस के आयत करीमा के अतबार से मुतालबा किया। लिहाजा जनाब सैयदा सलामुल अलैहा के गोया के तीन मुतालबात हुए। एक मुतालबा क्या हो गया, मीरास का। मीरास का मुतालबा कहाँ से था, मदीना के जो अमवाल थे। दूसरा मुतालबा हिबा के, मेरी मिल्कियत है हिबा के इनवान से, अगरचे मालिफ़ा की सूरत में आया लेकिन रसूलुल्लाह ने मिल्कियत बना दिया, वह कौन सा था, फदक। और तीसरा कि खुमस की आयत में वाज़ तौर पर आया है कि ज़िलक़ुरबा का हक़ है, यतामा मसाकीन इब्ने सबील इनके लिए खुमस दिया जाएगा। सूरह अनफाल में वाज़ आयत है कि इंशाअल्लाह ताला अभी वक्त कलील है, हम आयात को कल मुतालिया करेंगे। उसके मुताबिक खुमस उनका हक जुदा तौर पर बनता था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक हक़ है ही है, उसके बाद ज़िलक़ुरबा के इनवान से भी उनका हक़ बनता था। वो कहते हैं वो कहाँ पर है, सारा ही तुम ले गए। लिहाजा खलीफे अव्वल से तीन मुतालबात हुए, एक मीराज के इनवान से, एक हिबा के इनवान से और एक खुमस के इनवान से। ये सही सनद रिवायत अहले सुन्नत में, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है और दीगर कुतुब में भी है। और इसके बाद क्या जवाब दिया खलीफे अव्वल ने, वो इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। और उसके बाद फिर आगे है कि उनके जवाब की सूरत में जनाब सैयदा सलाम अलैहा का क्या तासुर, और मुकाबले में जनाब सैयदा सलामुल अलैहा ने क्या रवैया इख्तियार किया उसे देखेंगे। और उसके बाद ये मुतालिया करेंगे अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनकी हैसियत लोगों में क्या थी। इस्तनकरा अलीयुन वजूहन नास, अली अलैहिस्सलाम लोगों के चेहरों के ऊपर मुनकरात देखते थे उनके अपने हवाले से, नफ़रत के रवैये और नफ़रत का इजहार। ये अहले मदीना, अहले मदीना के लोग ये नफ़रत किया करते थे। वजूहन नास, अन्नास का लफ्ज़ वो फ़क़त खलीफ़ा अव्वल खलीफ़ा दुव्वुम के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा जनाब सैयदा सलामुल अलैहा के जो दफन और नमाज जनाजा के वाक़ियात हैं उसमें भी उनकी नाराज़गी वाज़ तौर पे उस माशरे से जो अहले मदीना जिस माशरे की पर मुश्तमिल था, सिर्फ़ एक दो अफराद से उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, उन्होंने उस माशरे से शिकवा और गिला और नाराज़गी का इजहार किया। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।